ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। तराई के जिलों में घने कोहरे के साथ शीतलहर की है स्थिति। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने कहा शीतलहर कुछ दिन रहेगी बरकरार। गुरुंग समुदाय ने नए साल का स्वागत करते हुए मनाया तमुल लोसार। शिक्षा को श्रम और रोजगार से जोड़ने की बात पर उपराष्ट्रपति डॉ राम साहेब प्रसाद यादव ने दिया जोर। और पाकिस्तान में हुई बस दुर्घटना में 11 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। तराई के जिलों में आज शीतलहर की स्थिति है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भूभाग और बागमती गंडकी लुम्बिनी और सुदूर पश्चिम प्रदेशों के तराई इलाके में आज सुबह से ही घने कोहरे के साथ शीतलहर शुरू हो गई है। रेडियो नेपाल के साथ बातचीत में जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विभाग पूर्वानुमान महाशाखा के वरिष्ठ मौसमविद शांति कड़ेल ने बताया कि शीतलहर की स्थिति तराई में कुछ दिन और रहेगी। उन्होंने सभी से सावधानी अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि तराई के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले 3 दिन तक देश के किसी भी हिस्से में बारिश या हिमपात की संभावना नहीं है। इस बीच हमारे तराई के संवाददाताओं ने बताया कि शीतलहर शुरू होने के कारण यहां के जनजीवन प्रभावित बने हुए हैं। गुरुंग समुदाय ने नए साल का स्वागत करते हुए आज तमु लोसार पर्व मनाया। गुरुंग समुदाय की बहुलता वाले लमजोंग, गोरखा, तनहू, स्यांगजा, मनांग, कास्की पर्वत लगायत जिलों में तमु लोसार विशेष रूप में मनाया जाता है। लोसार के मौके पर आज काठमांडू के टोडीखेल में गुरुंग समुदाय ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। बाजरा लगायत सुदूर पश्चिम के कुछ जिलों में भुआ पर्व शुरू हुआ है। दशहरा और यमपंचक के बाद दूसरे सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाया जाने वाला भुआ पर्व आज से शुरू हुआ है। पौराणिक काल में कौरव पर पांडव के विजय प्राप्त दिवस के रूप में यह पर्व पूस की अमावस्या से 3 से लेकर 5 दिनों तक मनाया जाता है। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय और चीन के बीजिंग भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालय के बीच सहकार्य संबंधी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की उपस्थिति में प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में आज हुए कार्यक्रम में लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्राध्यापक डॉ सुवर्णलाल वज्राचार्य और बीजिंग भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालय के अध्यक्ष त्वांग फंग ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये। समझौते के मुताबिक दोनों देशों के विश्वविद्यालय संस्कृति आदान प्रदान, भाषा शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के लिए काम करेंगे। इसी तरह बीजिंग में नेपाल इंस्टीट्यूट और लुम्बिनी में चाइना इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। बीते मार्गशीर्ष 17 से 20 गति तक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के औपचारिक चीन दौरे के दरमियान चीन के साथ स्वयंसेवी चीनी भाषा शिक्षण को लेकर एक समझौता हुआ था। उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव ने कहा कि शिक्षा को श्रम, रोजगार और देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। आज उदयपुर चौदंडी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 स्थित सरस्वती मावी सावा के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति यादव ने कहा कि समयानुकूल पाठ्यक्रम और सिखाने के तरीकों में बदलाव होना चाहिए। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन से ही देश मजबूत नहीं हो सकता, इसलिए अब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष जरूरी है। आज झापा के गौरीगंज में माओवादी केंद्र द्वारा तमु लोसार के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जनता में माओवादी केंद्र के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि सर्वदलीय सहमति में संविधान संशोधन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। नेकपा एमाले दांग प्रचार प्रसार विभाग द्वारा आज आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रम में महासचिव पोखरेल ने कहा कि संविधान क्रियान्वयन के एक दशक की समीक्षा करके अधिकतम सहमति के आधार पर संविधान संशोधन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने आज सोशल नेटवर्क एक्स के माध्यम से उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि शांति, मानवाधिकार और दान में कार्टर का योगदान दुनिया के लिए प्रेरणा है। इसी तरह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कार्टर के निधन पर दुख व्यक्त किया। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल ने कहा कि सड़क तथा संरचनाओं को आर्थिक समृद्धि से जोड़ना जरूरी है। सड़क बोर्ड नेपाल की 22वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आज बोर्ड में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री दाहाल ने कहा कि अब बनाई जाने वाली संरचनाओं को दीर्घकालीन, सुरक्षित और उपयोगी बनाने की ओर ध्यान देना होगा। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने देश में गुणवत्तापूर्ण मशरूम बीज पैदा करने के लिए काम शुरू कर दिया है। आज काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में मशरूम उत्पादक किसान संघ द्वारा आयोजित मशरूम मेला और व्यंजन महोत्सव में मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष के भीतर मशरूम की खेती के लिए सिफारिश की गई किस्मों को पंजीकृत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि इस पर शोध के बाद इसके प्रसार के लिए कृषि मंत्रालय एक कार्ययोजना तैयार करेगा। कैलाली की लमकीचूहा नगरपालिका ने अपने अति विपन्न नागरिकों के लिए आवास का निर्माण किया है। गरीबी के कारण टपकती छप्पर वाली छतों के नीचे रहने को मजबूर नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए गैर सरकारी संस्था राष्ट्रीय दलित नेटवर्क के सहकार्य में 45 घरों का निर्माण किया गया है। नगर प्रमुख जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के कौवापुर शिविर में सुकुम्बासी के 33 घर निर्माण किए गए हैं। वहीं वार्ड के दलित तथा अति विपन्न और गैर दलितों के लिए 5 घर निर्माण किए गए हैं। ये जानकारी लमकीचूहा नगरपालिका ने दी। ड्यूटी में घास काटने के दौरान पहाड़ से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे में जोरायल गांवपालिका 3 पातल की 39 वर्षीय भूमिसरा खड़का की मौत हो गई। ये जानकारी हमारे संवाददाता मनमोहन ठकुल्ला ने दी। मकवानपुर में बाघ के हमले से एक वृद्धा की मौत हो गई। मकवानपुर की मनहरी गांवपालिका वार्ड नंबर 5 बसंतपुर में बाघ के हमले से स्थानीय 72 वर्षीय कांची माया रूम्बा की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान पंजाब के फतेह जंग इलाके के पास एक बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बहावलपुर से इस्लामाबाद जाते समय M14 मोटरवे पर बस पलट गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने इस हादसे के बाद बताया कि पीड़ित बहावलपुर, बेहरी, शरकपुर और इस्लामाबाद के निवासी थे। ANI ने जियो न्यूज के हवाले से बताया कि हादसे के बाद बचाव अधिकारियों ने कहा कि 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को बेनजीर भुट्टो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक अन्य घायल को इस्लामाबाद और जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जियो न्यूज के अनुसार मोटरवे पुलिस ने दुर्घटना के लिए ड्राइवरों की लापरवाही के कारण इस हादसा के होने को बताया। मोटरवे पुलिस महानिरीक्षक रिफत मुख्तार ने तुरंत इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तराई के जिलों में घने कोहरे के साथ शीतलहर की है स्थिति। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने कहा शीतलहर कुछ दिन रहेगी बरकरार। गुरुंग समुदाय ने नए साल का स्वागत करते हुए मनाया तमुल होसार। शिक्षा को श्रम और रोजगार से जोड़ने की बात पर उपराष्ट्रपति डॉ राम सहाय प्रसाद यादव ने दिया जोर। और पाकिस्तान में हुई बस दुर्घटना में 11 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।